दिनभर गुरुवार 22 अक्टूबर मैं हूं निखिल रंजन। विजयादशमी पर सालाना भाषण में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, भारत विविधताओं का देश लेकिन होती है छोटी मोटी बातें।
छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहती है, उसका बहुत बड़ा करके चित्र बताया जाता है, लेकिन वास्तविक व्यवहार क्या है।
दलितों को जलाने वाली घटना पर बयान देकर फंसे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी ने लगाए काला धन को सफेद करने के आरोप।
हम आज कांग्रेस से ये सवाल पूछते हैं, ये काला धन किसका है? कोलगेट का है, 2G का है, CWG का है या जीजा जी?
खेल की खबरों के साथ होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। विजयादशमी के मौके पर सालाना भाषण में नागपुर में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उनके इस बयान को दादरी में गोमांस खाने की हत्या पर अखलाक की हुई हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन भागवत का कहना है कि हम अपने पूर्वजों के गौरव को मन में रख के चलते हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, हम समन्वय में यकीन रखते हैं, इससे हमारी संस्कृति नहीं बदलती है। मोहन भागवत ने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और कहा कि पिछले 1.5 साल में दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फलस्तीन और इसराइल से बढ़ रही हिंसक घटनाओं को रोकने की अपील की है। बर्लिन में कैरी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बातचीत से वो सकारात्मक तो हैं लेकिन सावधान भी हैं कि आगे की राह निकल सकती है।
I come directly from several hours of conversation with Prime Minister.
मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कई घंटों की मुलाकात के बाद आ रहा हूं और इस बातचीत से मुझे सावधानी से भरी हुई उम्मीद मिली है कि एक दो दिन में ऐसी कुछ बातें सामने आ सकती हैं जिनका दोनों पक्षों के लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वो बातचीत की स्थिति में आए और स्थिति को शांत किया जा सकता है। ये थे जॉन कैरी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी मीडिया में आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इराक के उत्तरी इलाके में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में बंधकों को छुड़ाने के एक अभियान में एक अमरीकी सैनिक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि इस अभियान में करीब 70 कुर्द बंधकों को छुड़ाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक इस्लामिक स्टेट इस जेल को चलाता था जिस पर कुर्द इराकी लड़ाकों की मदद से अमरीकी विशेष सुरक्षा बलों ने छापे मारे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेक गणराज्य के सरकारी अधिकारियों पर प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ बर्ताव में सुनियोजित तरीके से मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था के अध्यक्ष ने कहा है कि चेक गणराज्य ने करीब 90 दिन तक प्रवासियों को अपमानजनक स्थिति में रखा। जैद राद अल हुसैन ने कहा कि हिरासत में लिए गए प्रवासियों के कपड़े उतरवाकर नकदी के लिए उनकी तलाशी ली गई। हुसैन ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोष जिमान के इस्लामोफोबिक वाले बयान पर भी विरोध जताया। स्वीडन में गोथनबर्ग शहर के पास एक स्कूल में चाकू लिए एक नकाबपोश शख्स ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुरुष शिक्षक और एक छात्र की मौत हो गई है। इसके अलावा एक छात्र और एक अन्य शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन और आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। दशहरे के दिन 90 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आज आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में अपने सालाना भाषण में हाल की घटनाओं के हवाले से कहा कि देश में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं लेकिन इसे बड़ा करके बताया जाता है। मोहन भागवत ने और क्या कहा, पूरा ब्यौरा सुनिए जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में।
बीफ को लेकर हाल में हुई हत्याओं और हिंसा का हवाला दिए बगैर मोहन भागवत ने कहा, ये छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें तूल दिया जा रहा है। उन्होंने अपने सालाना भाषण में कहा कि हम अपने पूर्वजों के गौरव को मन में रख के चलते हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, इससे हमारी संस्कृति नहीं बदलती। उन्होंने कहा,
उन हमारे पूर्वजों का गौरव उसको मन में रखकर हम चलते हैं और इसलिए छोटे मोटे ऐसे प्रसंग होते हैं भारत की संस्कृति नहीं बिगड़ती, हिंदू संस्कृति नहीं बिगड़ती, सनातन संस्कृति विविधता में एकता देखते हुए समन्वय और कृतज्ञता की बुद्धि सिखाते हुए त्याग संयम के आधार पर चल रही है, चलती रहेगी।
आरएसएस प्रमुख के छोटी मोटी बातों वाले बयान को कुछ हलकों में दादरी कांड से जोड़कर देखा जा सकता है। दादरी में गौ मांस खाने की अफवाह पर एक भीड़ ने एक मुस्लिम को पीट पीट कर मार डाला था। इस कांड पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इसे एक महज हादसा बताया था। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में बोलते हुए मोहन भागवत ने बीजेपी सरकार के अच्छे काम की प्रशंसा की और कहा कि पिछले 2 सालों में भारत मजबूत हुआ है। उन्होंने देश में सद्भावना और मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघ के लोग दिल्ली के एक मस्जिद में गए, निजामुद्दीन दरगाह गए, साफा पहना के स्वागत किया गया, संवाद करने गए थे, संवाद करके आए। उनके नाम पर एक कवाली भी हुई, जैसा कि उन्होंने बताया।
संघ के स्वयंसेवक जाके आए, दिल्ली के एक मस्जिद में जाके आए, वहाँ हजरत निजामुद्दीन के वहाँ पर जाके आए, साफा पहना के उनका स्वागत हुआ, वहाँ कव्वालियाँ चल रही थी, इनके नाम भी एक कव्वाली गाई गई, संवाद करने गए थे, संवाद करके आए।
विजयदशमी के दिन ही साल 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। मोहन भागवत का कहना था कि भारत ने हमेशा से अपने हित की रक्षा करते हुए स्नेहपूर्ण संबंध रखे हैं। अपने हित की रक्षा करते हुए पूरी दुनिया के हित की रक्षा करना भारत का उद्देश्य है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि एक नए भारत के निर्माण की बात आगे बढ़ानी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए और विमर्श का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
इधर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड अखबार वाले मामले को लेकर काला धन सफेद करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन एक ऐसी कंपनी से लिया गया जिसके मालिक ने काला धन सफेद करने की बात आयकर विभाग के सामने स्वीकार की है। यह मामला कुछ दिन पहले अखबारों में भी आया था। आज बीजेपी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ दस्तावेज सामने रखे और कांग्रेस पार्टी से उनके सवालों के जवाब देने को कहा।
ये शंकर महावर 200 कंपनियों के मालिक है। तमाम कंपनियों के नाम इस दस्तावेज में मौजूद है। 194 नंबर जो कंपनी है इस डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, ये वही डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है जिससे यंग इंडिया, जिसके मालिक सोनिया जी और राहुल जी है, ने 1 करोड़ रुपए लोन लिया। कि ये जो डिपोजिशन किया है उदय शंकर महावर जी, इसमें ये कहते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनियां क्या काम करती थी, तो ये कहते हैं हमारी कंपनियां काला धन को सफेद बनाती थी। कल कांग्रेस से जब पूछा गया तो उनके प्रवक्ता ने कहा, तो क्या हुआ, हमने लोन लिया और किससे दिया ये हमें थोड़े ही पता है। अरे आप कोई साधारण लोग थोड़े ही हैं। 2011 में जब आप लोन ले रहे थे तो आप सरकार में थे, आपके पास वो तंत्र था कि आप जान सकते थे आप किससे लोन ले रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये उठता है, 1 करोड़ का लोन क्या सोनिया जी और राहुल जी को चाहिए? अरे एक बार केवल ऐसे इशारा करेंगे उंगली से तो 1 करोड़ उनके चरणों में बिछाने वाले उनके पार्टी में कोटि कोटि ऐसे भ्रष्ट नेता है। मगर ये 1 करोड़ की बात नहीं है कि जो 90 करोड़ रुपए सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, ये पूरा 90 करोड़ रुपए काले धन का ही होगा। हम आज कांग्रेस से ये सवाल पूछते हैं, ये काला धन किसका है? कोलगेट का है, 2G का है, CWG का है या जीजा जी का है? ये काला धन किसका है, ये कांग्रेस बताए।
उधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सारी बातें सार्वजनिक पटल पर हैं और इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। पार्टी का ये भी कहना है कि बिहार चुनाव में संभावित हार को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
यंग इंडियंस ने 1 करोड़ रुपया आरपी गोयनका समूह की कंपनी जिसका नाम आपने लिया उससे लिया, 14% ब्याज पर लिया, 14% ब्याज सहित वो पैसा वापस लौटा दिया गया, हमारी कंपनी का ऑडिट हुआ, ROC के अंदर रिटर्न फाइल हुई, सब कुछ ठीक पाया गया। इसके अलावा कोई और जांच सरकार करवाना चाहे, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात जरूर कहेंगे कि ईडी के कागज, इनकम टैक्स के कागज, कंपनी आरओसी के कागज, किस प्रकार से मोदी सरकार बिहार की हार को सामने देखते हुए अलग अलग लोगों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से कानून के उल्लंघन में, क्योंकि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई इत्यादि के कागजात दिए नहीं जा सकते कानून में, किस प्रकार से स्टोरी प्लांट कर रही है मोदी सरकार, इसको भी देखने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, सारी बातें सार्वजनिक पटल पर हैं।
ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने बीजेपी के आरोपों पर कहा है कि सारी बातें सार्वजनिक हैं। हरियाणा के सोनपेड़ गांव में एक दलित परिवार के घर में आगजनी की घटना में दो बच्चों की मौत के बाद से राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयानबाजी जारी है। गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की ओर से इस घटना पर आए एक बयान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वीके सिंह ने घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो इसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इसे दलितों का अपमान बताते हुए वीके सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनके इस्तीफे की मांग की है। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
कभी स्थानीय घटनाओं का सरकार से ताल्लुक मत रखो, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। परिवारों के बीच में मतभेद था, वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ, कहां पर इंतजामिया का फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है।
केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का ये बयान उस वक्त आया है जब फरीदाबाद के एक परिवार में हुई आगजनी और उसमें हुई दो बच्चों की मौत की घटना से देश की राजनीति में खासा उबाल आया हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वीके सिंह के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए न केवल उनके इस्तीफे की मांग की है बल्कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने की भी मांग की है। कांग्रेस के प्रवक्ता और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीके सिंह के इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा,
हम मांग करते हैं कि जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री पर दफा 3 और 4 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एक्ट 1989 के तहत फौरन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हम यह भी मांग करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर जनरल वीके सिंह से जरा सा भी असहमत हैं और अगर ये बयान उनकी मंशा और सहमति से नहीं दिया गया है तो जनरल वीके सिंह को मंत्री पद से फौरी तौर से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
दूसरी तरफ अपने इस बयान पर एक ट्वीट के जरिए स्पष्टीकरण देते हुए वीके सिंह ने लिखा है कि उनके बयान का मकसद दोनों मामलों को एक सा बताना नहीं था। उन्होंने सेना और अपनी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए लिखा है कि वे और उनके सिपाही किसी जाति, संप्रदाय और धर्म का फर्क किए बगैर देश के लिए जान हथेली पर लेकर सीमा की हिफाजत करते थे। उधर माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने भी वीके सिंह के इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वीके सिंह अपने बयान के जरिए जांच को भी प्रभावित कर रहे हैं।
He is clearly trying to influence the investigation also by central agency by making a statement and judging it to be a personal dispute.
इस तरह का बयान देकर और इस घटना को इन परिवारों की आपसी रंजिश बताकर वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
उधर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीके सिंह का बचाव किया है।
नहीं देखिए, जहाँ तक आदरणीय वीके सिंह जी का बयान है, खुद उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि फरीदाबाद में जो हुआ वो बहुत कंडेमनेबल है, बहुत दुखद है और उनके पूरे वाक्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रस्तुत किया गया है।
सोमवार को हरियाणा के दलित परिवार के घर में आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में 2.5 साल के वैभव और 11 महीने की दिव्या की जलकर मौत हो गई थी और इनके माता पिता भी झुलस गए थे।
दलित परिवार के घर में आगजनी की घटना पर बयान देकर फंसे जनरल वीके सिंह, जो देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं।
रिपोर्ट बीबीसी इंडिया बोल।
दिल्ली का नया नारा है कार फ्री डे। शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइकिल चलाई। बीते महीने से गुड़गांव भी हर मंगलवार को मना रहा है कार फ्री डे। मकसद है लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर ले जाना। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या एक दिन की कोशिश बन जाएगी आदत? कितना कम होगा प्रदूषण? इंडिया बोल में इस शनिवार इसी मुद्दे पर होगी बात। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो फोन करना ना भूलिएगा अपने सवाल पूछने के लिए बीबीसी इंडिया बोल में। अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार और वहां के विधानसभा चुनाव पर बीबीसी एक खास सीरीज चला रही है, जिसके जरिए कुछ बातों के मतलब समझाए जा रहे हैं। और आज का सवाल है कि विकास बिहार के चुनाव के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। इसका जवाब जानने के लिए सुनते हैं आज का बूझिए ना बिहार को।
बूझिए ना बिहार को CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल।
बिहार विधानसभा चुनावों में विकास का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है?
इन चुनावों में सारी चर्चा इसी बात पर है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है या चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, और ऐसे भी मतदाता हैं और पार्टियां भी ऐसा सोचती हैं कि विकास तो मुद्दा एक है, लेकिन शायद मतदाता जाति के आधार पर गोलबंद होकर के अलग अलग पार्टियों को वोट देंगे।
तो क्या इन वादों की भीड़ में विकास जो है वो पीछे छूट जाएगा?
मुझे नहीं लगता कि विकास कहीं पीछे छूट रहा है। अगर कोई पार्टी जातियों की गोलबंदी या सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रहा है तो वो विकास नहीं है। अहम बात यह है कि विकास को अलग अलग पार्टियां, अलग अलग वोटर समझते कैसे हैं। क्या पार्टियां जिस तरह से विकास को देखती हैं, क्या वोटर भी विकास को उसी तरह से देखते हैं? क्या बड़े बड़े शहरों में मॉल बन जाना, बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बन जाना, क्या यही विकास है? मुझे लगता है इस बात में भेद करने की जरूरत है, और एक आम मतदाता इसको अलग नजरिए से देखता है। एक ग्रामीण मतदाता के लिए 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे बिजली आ जाना, जिस गाँव में कभी बिजली नहीं थी उसे वो विकास समझते हैं। शहरी इलाकों में, बड़े शहरों में जहां बिजली 8 घंटे होती थी, 10 घंटे होती थी, वहां 24 घंटे बिजली आ जाने को विकास समझते हैं। विकास की परिभाषा, पैमाने अलग अलग वोटरों के लिए अलग अलग है। लालू यादव के शासनकाल में लोग कहते थे विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ। लेकिन मुझे लगता है बिहार में ऐसे मतदाता भी थे जो लालू यादव के 15 साल के शासनकाल को भी विकास से जोड़ते हैं। ये जरूर है वह विकास बिजली पानी सड़क का विकास नहीं था, लेकिन ये जरूर है वो विकास सामाजिक सशक्तिकरण का विकास था। उसमें लोगों की पहचान बनी, गरीब और जो पिछड़े तबके के मतदाता थे उनको एक स्वर मिला जिसको वो मतदाता एक विकास के रूप में देखते हैं। तो विकास का मुद्दा न तो मुझे लगता है पहले पीछे था न आज पीछे छूटा है। यह जरूर है कि विकास की परिभाषा मतदाता अपने अपने तरीके से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बूझिए ना बिहार को।
और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। स्लोवेनिया की पुलिस का कहना है कि पिछले 24 घंटे में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग देश की सीमा के भीतर आ गए हैं। व्यवस्थाओं से नाराज प्रवासियों ने वहां राहत शिविरों के कुछ टेंटों को जला दिया है। लगातार बढ़ती ठंड ने शरणार्थियों और उन्हें मदद कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुनौती को और बढ़ा दिया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
स्लोवेनिया में प्रवासियों के प्रवेश से पहले उनका पंजीकरण किया जा रहा है, लेकिन पंजीकरण की गति धीमी होने के कारण नाराज शरणार्थियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रिशिट्ज़ा कैंप के अपने टेंटों को आग लगा दी है। शरणार्थी इन राहत शिविरों में खाना पानी और कंबल की कमी के कारण काफी नाराज हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग स्लोवेनिया की सीमा के भीतर आ गए हैं। इस बीच प्रवासी मामलों के यूरोपीय आयुक्त डिमिट्रिस एवरामोपोलस इस मसले पर चर्चा के लिए स्लोवेनिया के दौरे पर हैं। उधर सर्बिया और क्रोएशिया की सीमाओं के बीच हजारों की तादाद में शरणार्थी बर्केसोवो बाप्स्का बॉर्डर क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहे हैं। UNHCR के निकलॉस एस्टो एरप बताते हैं कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हालात और ज्यादा कठिन होते जा रहे हैं।
इट्स गेटिंग कोल्डर, सो ऑफ कोर्स
ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अहम बात यह है कि लोगों को टेंट और कंबलों की जरूरत है, साथ ही पानी की भी जरूरत है और बिस्किट वगैरह की भी। हमने कोशिश की है कि हम ये चीज़ें लोगों को मुहैया करा पाएं। इतनी ठंडी रातों में इस तरह सो पाना वाकई आसान नहीं है।
ये थे UNHCR के निकलॉस एस्टो एरप के शब्द। बॉर्डर क्रॉसिंग पर ही इराक से आए फहाद नाम के ये शख्स बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से उन्हें खाना और कंबल मुहैया कराए जा रहे हैं। बुरे मौसम की शुरुआत हो चुकी है, ये बहुत ठंडा मौसम है, पर संयुक्त राष्ट्र हमें मदद कर रहा है। उसकी तरफ से हमें कंबल, खाना, पानी दिया जा रहा है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि गेट खोले जाएं और हम जर्मनी की तरफ जा सकें। ये थे एक शरणार्थी फहाद के शब्द। उधर दूसरी तरफ प्रवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि पीटर सुदरलैंड ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासियों को मदद पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोप को भी इस समस्या से निपटने के लिए सहयोग करना होगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से वो सब कुछ किया जा रहा है जो किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार यूरोपीय संघ के देशों को ही प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने के लिए आगे आना होगा। ये थे प्रवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि पीटर सुदरलैंड के शब्द। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ईयू के अध्यक्ष जॉक क्लाड यंकर ने रविवार को एक बैठक बुलाई है, क्योंकि एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा सहयोग, ज्यादा परामर्श और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है।
लगातार बढ़ती ठंड से परेशान हो रहे हैं शरणार्थी जो पहुंच रहे हैं सीरिया और दूसरे देशों से यूरोप में। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा तैयार किया था रोहित जोशी ने, जिसे आपको सुनाया संदीप राय ने। और अब वक्त है
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार, देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं,
अब पीना की मची
है, उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
तो ये थी बीबीसी के टेलीविजन कार्यक्रम की बात। और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, आइए सुनें आपकी राय।
श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूँ स्वाति बख्शी, और आज आपकी चिट्ठियों के जवाब देंगे बीबीसी हिंदी सेवा के संपादक निधीश त्यागी।
सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
सबसे पहले मैं एक पोस्ट कार्ड उठा रही हूँ। ये पोस्ट कार्ड आया है जालौर राजस्थान से, लिखने वाले हैं कर्मी राम नरीगाजी प्रजापत, जितनी इनकी राइटिंग मुझे समझ में आ रही है। ये लिखते हैं कि आजकल राजेश जोशी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, और हो सके तो बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई कार्यक्रम रेडियो पर पेश करें ताकि कोई भी बच्चा या बहू उनको तकलीफ ना दे।
मेरे ख्याल से कोई ऐसा कार्यक्रम तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित समय है रेडियो पे कार्यक्रम का, पर उनसे जुड़े विषयों पर जरूर हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहे हैं, पहले भी आगे भी करेंगे।
जी, दूसरा भी पोस्ट कार्ड ही है और इसमें एक आरोप है निधीश। ये लिखने वाले हैं ओम प्रकाश पाठक बलिया उत्तर प्रदेश से, कहते हैं कि दादरी कांड निश्चित तौर पर बर्बर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जहां तक गौमांस खाने का प्रश्न है बीबीसी इस पर सकारात्मक रिपोर्टिंग कर रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर थोड़ा सा असमंजस में हूं कि अगर सकारात्मक रिपोर्टिंग क्या होती है और वो अगर है तो दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है। मुझे लगता है कि ये एक विवाद है जिसको लेकर हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव रहे हैं, तथ्यात्मक रहे हैं, और इसमें हर पक्ष के बारे में लिखा गया है, तो इसलिए मैं बहुत विनम्रता से जो है इसको स्वीकार करने में असमर्थ पा रहा हूँ खुद को। हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है इस बात का।
फारूक अब्दुल्ला फिजा ने लक्ष्मीपुर रक्सौल से चिट्ठी लिखी है, कहते हैं कि सलमान रावी साहब की रिपोर्ट जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव पर की है वो उन्हें पसंद आई है और उन्हें धन्यवाद देने की बात इन्होंने लिखी है।
बिहार चुनाव में तो हम लोगों का काफ़ी लगातार एक कवरेज बना रहेगा, अभी पंकज वहाँ पहुँचे हैं तो उनकी वहाँ से रिपोर्टिंग अब आ रही है और नितिन भी जा रहे हैं,
तो और भी आपको सुनने को बिहार से रिपोर्टिंग मिलेगी।
और बिहार, सब लोग पूरा देश इस समय बिहार के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक उसको लेकर सभी लोग और अधिक उस बारे में बात करना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हम लोग अलग और खास लेकर आते रहें।
और अब ईमेल्स की बारी, मोहम्मद जीशान नैयर हमेशा ईमेल लिखते रहते हैं और इन्होंने फिर से एक ईमेल लिखा है जिसमें लिखते हैं कि निखिल रंजन ने कनाडा में जो नई सरकार बनने पर दुनिया जहान प्रस्तुत किया वो इनको अच्छा लगा, लेकिन ये साथ ही कह रहे हैं कि दिन भर की शुरुआत वीरेंद्र सहवाग से हुई। ये सही है कि सहवाग एक महान प्लेयर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें 10 मिनट या इससे ज़्यादा दे दें, और टीवी जो बीबीसी का है वो बहुत ही कम वक्त के लिए दिखाई देता है।
हाँ, टीवी 10 मिनट का ही है और वो उसका काम सिर्फ आपको दुनिया भर में जो भी कुछ हो रहा है और इस बीच बीबीसी के भीतर जो है बेहतरीन चीज़ें क्या हैं उनको एक झरोखे की तरह वो है। अब सहवाग का जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर इसलिए भी रही है क्योंकि वो शायद हम लोग वो हमेशा सचिन के आसपास रहे हैं, तो हम लोग शायद उनको कभी भी ठीक से उनकी अपनी रोशनी में उनको शायद नहीं देखा गया है। और मुझे पता नहीं कि जीशान क्रिकेट के कितने शौकीन हैं, पर जो लोग शौकीन हैं उन्हें तो कवरेज वो भी कम लग रहा होगा।
जी, ये हो सकता है कि इनको शायद दिलचस्पी खुद से ना हो क्रिकेट में। दो मेल्स हैं जिनमें एक ही तरह की बात लिखी गई है। सुभाष कुमार कहते हैं कि रेडियो प्रसारण को ऑनलाइन सुनने की जो सुविधा अभी है उसके साथ डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। और एक और हमारे श्रोता ने यही लिखा है कि डाउनलोड करने की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है।
उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ समय लग रहा है उसमें, पर मेरे ख्याल से कभी जल्दी वो हो जाएगा कि आप अपना पॉडकास्ट अपने डाउनलोड कर सकते हैं जो बीबीसी की जो खास कार्यक्रम है कम से कम वो तो।
जी, और आपने अभी थोड़ी देर पहले बिहार चुनाव की बात की थी। आशीष पांडे का एक मेल है बलिया से, उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं कि मेरी तरफ से एक सुझाव ये है कि आप बूझिए ना बिहार को, थोड़ा ज़्यादा उस पर जोर दें, एम्फेसिस दें, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है।
हाँ, थोड़ा सा अलग से सोचा है और ये मुझे खुशी है कि ये हमारे श्रोताओं को और पाठकों को पसंद आ रहा है। हालांकि अब तो चुनाव के लगभग हम बीच में पहुंच चुके हैं, अब तो बिहार ही बताएगा कि वो कैसे बूझ रहा है अपने आप को और अपने जनादेश को।
जी, मेल्स और पोस्टकार्ड्स तो और भी हैं लेकिन हमारे पास और वक्त नहीं है निधीश, तो हमें यहीं पर विदा लेनी होगी। नमस्कार।
तो ये थी आपकी चिट्ठियां, आपकी शिकवे, आपकी शिकायत। पेश कर रहे थे बीबीसी हिंदी के संपादक निधीश त्यागी और स्वाति बख्शी। और अब खेल समाचार। खेल समाचार लेकर के स्टूडियो पहुंच चुके हैं आदेश कुमार गुप्त। बताइए आदेश जी, क्या है आज खेल समाचारों में?
जी देखिए, चेन्नई में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जहां फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट खोकर 137 रन है। एबी डिविलियर्स 41 रन बनाकर खेल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं फरहान बिहारदीन 17 रन बनाकर। और यहां ऐसा लगता है कि फिलहाल तक भारत का पलड़ा इस मैच में भारी है, क्योंकि आज भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 299 रन बनाए। हालांकि 99 फिर यानी 300 से एक रन कम
से रह गए, लेकिन ऊपर नहीं गया।
लेकिन अच्छी बात ये रही कि विराट कोहली जो नंबर 3 पर उतरे, काफ़ी दिनों से कश्मकश थी कि उन्हें किस नंबर पर भेजा जाए, लेकिन पिछले मैच में भी नंबर 3 पर आकर उन्होंने अर्धशतक जमाया, तो आज उससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने शानदार शतक पारी खेलते हुए 140 गेंदों पर 138 रन बनाए, जिसमें उनके 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे ने 45 रनों का योगदान दिया। सुरेश रैना की भी रैना आई और आज उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों पर 53 रन बनाए। इससे पहले पिछले 2 मैचों में वो अपना खाता नहीं खोल सके थे, उससे पहले मैच में वो केवल 3 रन बना सके थे।
विराट कोहली का ये कौन सा शतक था?
जी देखिए, 24वां शतक है और ये कहना होगा कि जिस तरह से वो जाने जाते हैं आज उसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने इससे पहले शतक लगाया था, तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया था, लेकिन आज बेहतरीन बल्लेबाजी की। और अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात की जाए तो डेल स्टेन ने 61 रन देकर 3 विकेट लिए और कैगिसो रवाडा ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 138 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। उधर कोलंबो में श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज मैच के पहले ही दिन श्रीलंका की पहली पारी 200 रन पर सिमट गई। श्रीलंका के लिए बिलिंद श्रीवर्धना ने सबसे अधिक 68 रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज के जोमेल बर्किन ने 67 रन देकर 4 विकेट लिए। स्टंप के समय वेस्टइंडीज ने 1 विकेट खोकर 17 रन बनाए थे। वहीं दुबई में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 282 रन बनाए। स्टंप के समय कप्तान मिसबाह उल हक 102 रनों की शतकीय पारी के साथ नाबाद थे और असद शफीक 46 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। और चलते चलते एक खबर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से, जहाँ भारत के पी कश्यप शायद पूरी तरह से फिट नहीं थे और जब वो मैच से हटे तो स्कोर था इंग्लैंड के राजीव ऑसिफ के खिलाफ 21-11, 13-21, 4-2 और वो हार कर बाहर हो गए एक तरह से।
बहुत शुक्रिया आदेश इन खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल की घटनाओं के हवाले से कहा कि देश में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फलस्तीन और इसराइल से बढ़ रही हिंसक घटनाओं को रोकने की अपील की है। अमरीकी मीडिया में आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इराक के उत्तरी इलाके में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के एक अभियान में एक अमरीकी सैनिक की मौत हो गई है। अमरीकी सेना ने अभी
इसकी पुष्टि नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेक गणराज्य के सरकारी अधिकारियों पर प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ बर्ताव में सुनियोजित तरीके से मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिनभर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।